ओम शांति। एक अत्यंत अनासक्त योगी एक बार किसी राज्य में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य का तेज उसके ललाट पर था। तपस्या उसके मुख से झलकती थी। ऐसा एक युवा तपस्वी कभी किसी राज्य में आया। बहुत लोग उससे मिलने आए और राज्य का जो राजा था उस तक भी यह खबर पहुंची। उसे भी इच्छा हुई कि ऐसे महायोगी से मिला जाए और वो राजा उस योगी से मिलने आते हैं और योगी को निमंत्रण देते हैं अपने भवन में आने का। योगी सहर्ष स्वीकार करता है और फिर वह योगी एक दिन उनके भवन में आता है। राजा उस योगी को अपने रथ में बिठाकर अपने राज्य की सैर कराते हैं, उसका बहुत स्वागत करते हैं, उसे भोज पर निमंत्रण भी देते हैं और फिर राज्य की सैर। जिस रथ पर बैठकर वो उस योगी को राज्य की सैर कराते हैं उस पे एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था। जब रथ रुका तो उस घोड़े ने योगी को थोड़ा आकर्षित किया और वो योगी उतरता है और उस घोड़े के ऊपर हाथ फिराता है। शायद योगी को वो घोड़ा बहुत पसंद आया। राजा को ऐसा लगता है। दूसरे दिन राजा अपने दरबार में एक घोषणा करते हैं, यदि कोई तपस्वी या कोई व्यक्ति धरती के अंदर एक साल तक रहे तो उसे मैं ये घोड़ा पुरस्कार में दे दूंगा। धरती के अंदर तो वो जो योगी बैठा होता है तो वो संपूर्ण अनासक्त। वो कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूं। राजा मान जाते हैं और एक गड्ढा खोदा जाता है और वो योगी उस गड्ढे में प्रवेश करता है। ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है एक साल के लिए। अंदर प्रवेश करते समय योगी कहता है कि एक मंत्र मैं दे रहा हूं, जब मुझे आप निकालोगे एक साल के बाद तो ये मंत्र मेरे कान में फूकना, तब तक मैं समाधि में रहूंगा। और इस तरह वो योगी समाधि मग्न जमीन के अंदर दफना दिया जाता है। एक साल हो जाता है परंतु राज्य पर आक्रमण हो जाता है और बहुत सारी ऐसी हलचल की घटनाएं होती है कि राजा तो वो भूल ही जाता है। और ऐसे करते करते 10 साल गुजर जाते हैं और सब लोग उस योगी को भूल जाते हैं। और अचानक एक दिन कोई याद दिलाता है कि उस योगी का क्या हुआ, तो राजा को भी याद आता है कि हाँ ऐसा एक योगी था जो कि जमीन में समाधि मग्न है और मैं तो उसे भूल ही गया। और तुरंत अपने कर्मचारियों से कहता है, सैनिकों से कहता है, जाओ और और उस योगी को बाहर निकालो, वो समाधि मग्न अंदर बैठा है। तो सैनिक जाते हैं, धरती को खोदते हैं, योगी वही होता है, उसके कान में मंत्र उच्चारण किया जाता है और योगी जागृत होता है। और जागृत होते ही सबसे पहले शब्द 10 साल के बाद उसके मुख से निकलता है, मेरा घोड़ा कहाँ है। दस साल की समाधि, परंतु घोड़े की स्मृति अब भी है। कैसी समाधि है? योगी अर्थात गीता में 2:54 में अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि स्थित प्रज्ञ योगी क्या है, मुझे बताओ, कैसे वो बोलता है, क्या वो करता है, कैसे वो चलता है। और उसके बाद बहुत सारे श्लोक है 72 तक, जिसमें स्थित प्रज्ञ योगी क्या है उसकी परिभाषा दी गई है। वह योगी जिसकी संपूर्ण कामनाएं नष्ट हो गई है, सांसारिक कामनाएं, वह योगी है। वह योगी मान अपमान, दुख सुख, जय पराजय, निंदा सुख सबसे परे है। वह योगी जो आत्मा में ही संतुष्ट है, वह योगी जो आत्मा में ही संतुष्टता का अनुभव करता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ योगी है। अगर एक भी इंद्रिय को खुली छूट दी जाए तो वो एक ही इंद्रिय व्यक्ति को डुबा देती है। गीता में लिखा है जैसे वायु किसी समुद्र में जाती हुई नाव को अपने बहाव में बहा ले जाती है, उसी तरह एक इंद्रिय भी यदि वश में नहीं तो वो योगी को बहा कर ले जाती है। इंद्रिय जरी लालिचेते कवतिके, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वरी में कहते हैं कि यदि एक इंद्रिय भी योगी जो जीत चुका है पहले, परंतु कौतुक से उस इंद्रियों की ओर जाता है या उसमें रमन करता है, तो उसको भी दुखे संसार के, संसार का दुख फिर से उसे पकड़ लेता है। ऐसी इंद्रियों की गति है। तो योगी अर्थात जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया है, योगी अर्थात जो स्थित प्रज्ञ है, योगी अर्थात जिसकी सांसारिक कामनाएं नष्ट हो गई है, योगी अर्थात जो आत्मा में ही संतुष्टता का अनुभव करता है, योगी अर्थात जिसका सुख बाहर ही किसी भी व्यक्ति वस्तु में नहीं है, ये योगी की परिभाषा है। आज के मुरली में बाबा ने किसकी व्याख्या की है? योगी कौन है, योगी क्या है, योगी कैसे होता है, योगी कैसे चलता है, उठता है, बैठता है, खाता है, सेवा करता है, उसकी संपूर्ण व्याख्या दी गई है। इससे पहले कि हम मुरली की शुरुआत करें और एक दूसरी घटना हम बताना चाहेंगे। बहुत पहले ईसा से भी पूर्व रोम में एक बहुत ही क्रूर शासक हुआ था कभी, नीरो नाम का। वो नीरो ऐसा क्रूर शासक था कि उसके लिए कहते हैं एक बार उसने बहुत सारे मित्रों को बुलाया जो कि बहुत ही सम्माननीय और ऐसे उसके आसपास के जो राजा थे उनको इलिट ग्रुप, ऐसा वीवीआईपी का ग्रुप, उनकी एक पार्टी थी, उनका जश्न हो रहा था और शाम हो गई, दिए दिन का उजाला समाप्त हो गया और रात हो गई। अब रात हो गई तो दिए नहीं थे, वो जो पार्टी चल रही थी, वो जो जश्न चल रहा था और वो जो नाच गाना वहां चल रहा था, उसमें अंधकार हो गया। तो उसने आदेश दिया उसके राज्य के जितने गरीब लोग हैं और उसके राज्य के जितने भी कारावास में बंद वो जो प्रिजनर्स है, कैदी है, उन सबको लाया जाए और वो जो महल है उसके आसपास जो बगीचा है वहां पर अलग अलग जगह पर सबको खड़ा कर दिया जाए, बांध दिया जाए और सबको आग लगा दी जाए, और ताकि उसकी रोशनी में रात भर वो जश्न चलता रहा। अंग्रेजी में कहावत है नीरो वॉज फिडलिंग व्हेन रोम वॉज बर्निंग, और वो अपनी वायलिन बजाता रहा। ऐसा वो क्रूर शासक था। प्रश्न नीरो का नहीं है फिर किसका है, कौन बताएगा? प्रश्न है नीरो के गेस्ट्स का। वो जो मेहमान थे वो भी चुप रह गए जबकि वहां पर आग लग रही थी, लोग जल रहे थे। जश्न नीरो का था परंतु नीरो के जो मेहमान थे वो भी चुप रह गए। रावण ने संसार को आग लगा दी है, संसार विकारों में धधक रहा है, जल रहा है, और ऐसी आग को देखकर जो चुप रह गए, ऐसी आग को देखकर जो कुछ नहीं कर रहे, आग उन्होंने नहीं लगाई है जो मेहमान थे, नीरोज गेस्ट्स, उनका दोष है, शायद उन्हीं का दोष है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुछ भी तो नहीं किया, माना कि उन्होंने आग नहीं लगाई थी परंतु जो आग लग रही थी उसका विरोध नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया, विद्रोह नहीं किया। उसी नीरो की पार्टी में वो लोग जश्न मनाते रहे, कहीं वो गेस्ट हम तो नहीं। जब संसार में आग लग रही है, एक एक व्यक्ति जल रहा है, कौन जला रहा है? ये रावण की पार्टी चल रही है, हम कहीं गेस्ट की तरह चुप तो नहीं है? विकारों की आग बाहर है, योगी अपने तपस्या की आग से उस आग को बुझाता है, और ये हमारा काम है। तो आज की मुरली 15 तारीख जनवरी मास 1983 इसी मेडिटेशन हॉल में चली हुई मुरली। कुछ बच्चे यहां बैठे हैं, कुछ नीचे हिस्ट्री हॉल में सुन रहे हैं। 18 तारीख को ओम शांति भवन का उद्घाटन है, उसके अगले मास एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है फरवरी में। तो बाबा अपने ऐसे बच्चों से मिल रहे हैं। तो आज बाबा ने किसकी चर्चा की है? योगी बच्चों की चर्चा की है। तो कितने प्रकार के योगी हैं? तीन। हम 21 प्रकार के योगियों की चर्चा करेंगे। हम कितने प्रकार के बच्चों की चर्चा करेंगे? 21 प्रकार के योगी जिनकी बाबा ने आज चर्चा की है, वो सभी योगी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है उनमें से कोई भी योगी नहीं है। सबसे पहले नंबर का योगी, ये जो योगी है वो सहयोगी है। परंतु सहयोगी में भी उसमें तीन विशेषताएं हैं। एक तो वो अथक है, दूसरा श्रेष्ठ उमंग उत्साह है, और तीसरा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला सहयोगी। परंतु कैसा सहयोगी? जिसमें श्रेष्ठ उमंग उत्साह है, जो अथक है थकता नहीं है, दिन रात लगा हुआ है सिक व प्रेम दिल व जान से, दिन रात अथक होकर सेवा करने वाला ऐसा विशेष में विशेष, विशेष में भी विशेष। ये पहले नंबर का योगी है जो कि सहयोगी है। उसे पता है आग जल रही है, वो शांत नहीं बैठ सकता है, जश्न नहीं मना सकता है, क्योंकि संसार जल रहा है, एक एक व्यक्ति जल रहा है, विकार एक एक को जला रहे हैं, कैसे शांत बैठेगा। उसे अपने तप से, उसे अपनी तपस्या का सहयोग देना है विश्व को। तो पहले नंबर का योगी है जो कि उमंग उत्साह से परिपूर्ण है, अथक है, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तीव्र गति से सहयोग दे रहा है। दूसरे नंबर का योगी वो भी सहयोगी है, परंतु उसकी तीव्र गति की जो सहयोग देने की प्रक्रिया है उसमें और उसके उमंग उत्साह में कभी कभी अंतर है, और इस अंतर के कारण वो अथक नहीं है। ये दूसरे प्रकार का योगी है। परंतु हां, कौन सी पॉजिटिव बात है यहां पर? परंतु हां, सहयोगी की बात चल रही है। हाँ, जो पहले नंबर के योगी है उनको जब देख लेता है तो तुरंत उसकी गति तीव्र हो जाती है। दोनों ही सहयोगी है। किस कार्य में सहयोगी? दिव्य कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में, अलौकिक कार्य में। बाप का दिव्य, श्रेष्ठ और अलौकिक कार्य, तीन शब्दों का प्रयोग किया है बाबा ने। भगवान के दिव्य कार्य में, भगवान के अलौकिक कार्य में, भगवान के श्रेष्ठ कार्य में जो सहयोगी है। और बाप का कार्य कौन सा है? बाप का कार्य है विश्व का कल्याण। उनका कार्य भी बाप समान है। इस कार्य में वो लगे हैं दिल व जान सिक व प्रेम दिन रात अथक होकर। परंतु कभी कभी अंतर पड़ जाता है। किस में अंतर पड़ जाता है? सहयोग देने में अंतर पड़ जाता है। किसी स्थान पर मंदिर का एक कार्य चालू था और वहां पर मंदिर बनाने वाला जो व्यक्ति था उसने कहा था कि गांव वाले सभी आ जाए, सभी सहयोग दे, कोई ईंट उठाए, कोई पत्थर उठाए, कोई पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखे, कोई भी जिस भी प्रकार का श्रमदान देना है श्रमदान दे। जब व्यक्ति अकेला ही मंदिर बनाता है तो वो अहंकार का मंदिर होता है। परंतु ये बहुत भला व्यक्ति होगा जिसने कहा था कि सभी आ जाए और इस बेहद के कार्य के लिए सभी अपना सहयोग दे, तो सारे गांव वाले आ गए। परंतु एक ऐसा व्यक्ति था जो एक पेड़ के नीचे अत्यंत दुखी दिखाई दे रहा था, उदास था, और ना ईंट उठा रहा था ना पत्थर उठा रहा था। कुछ मित्र उसके पास गए और पूछे कि तुम क्यों नहीं उठा रहे? तो उसने कहा, मैं कैसे उठाऊं, मैं भूखा हूं, मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, क्या भूखे पेट कोई श्रम कर सकता है, कार्य कर सकता है? उठाने की इच्छा तो है, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी सहयोग दूं, परंतु कैसे करूं, घर में रोटी तक नहीं है। तो उन मित्रों ने उसे अपने घर लेके गए और उसे भोजन कराया और फिर वापस आए। दोपहर में देखा तो वो व्यक्ति वैसा ही झाड़ के पास उदास है, अब भी ईंट नहीं उठा रहा है। तो उसके मित्र फिर आते हैं, कहते अब क्या हुआ? वो कहता है मैं कैसे उठाऊं, पेट तो भरा है, क्या भरे पेट भी पत्थर उठाया जा सकता है? प्रश्न पेट का नहीं, प्रश्न वृत्ति का है। जिसको देना है सहयोग वो देगा ही। एक गिलहरी ने भी सहयोग दिया था राम के पुल को बांधने में। वो बंदर थे वहां पर, वो उसकी हंसी मजाक कर रहे थे, परंतु उस गिलहरी का क्या उत्तर था? जब उन लोगों के नाम लिखे जाएंगे जिन्होंने भगवान के कार्य में सहयोग दिया, उस समय मेरा भी नाम होगा। तीसरे प्रकार के योगी सहज योगी, इसकी बाबा ने बहुत सारी परिभाषाएं दी है। क्या क्या कहा सभी बताएंगे। सहज योगी अर्थात जिनका समीप का संबंध है, बाप के जो क्लोज फ्रेंड है, भगवान जिनके आके साथ आकर क्या करता है, हैंडशेक करता है। ऐसा अनुभव है कि हम सेवा कर रहे और भगवान प्रकट हो जाए और कहे हेलो आई एम गॉड, सामने हाथ बढ़ाकर हैंडशेक। ऐसे योगी जो रूहानी युगल है, ऐसे योगी जो उससे अलग हो नहीं सकते, ये सहज योगी की परिभाषा है। और क्या क्या कहा सहज योगी के बारे में? जो सर्व प्राप्ति संपन्न है, सर्व प्राप्तियों का जिन्हें अनुभव है, जो खुश है, जो शक्तिशाली स्थिति में है, जो समर्थ है, जो एक रस है, जिनका हूं 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 है या हूं ही है, कौन है? हूं ही। अनुभव है हम बाप के हैं। क्या अनुभव है? हम बाप के है। ऐसे समीप संबंध वाले, नजदीक से नजदीक क्लोज फ्रेंड्स, संगम पर उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे बाप और दादा कंबाइंड है, वैसे वो और बाप कंबाइंड है। बाइबल में एक जगह रोमन्स 8:38, बाइबल का एक भक्त कहता है प्रार्थना में, नीदर डेथ नॉर लाइफ नॉर एंजल्स नॉर प्रिंसिपैलिटीज नॉर हाइट नॉर डेप्थ नॉर प्रेजेंट नॉर फ्यूचर नॉर एनी क्रिएचर प्रेजेंट और क्रिएचर टू कम नॉर नेकेडनेस शैल बी एबल टू सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। ना तो ऊंचाई और ना तो नीचाई, ना तो इस संसार का कोई व्यक्ति जो है या जो आने वाला है, ना तो संसार के कोई फरिश्ते, ना तो कोई प्रधानताए, ना तो कोई वस्तु, ना तो जीवन और ना ही मृत्यु हमें भगवान के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ऐसा वो भक्त बाइबल में कह रहा है कि ऐसा हमारा उससे अविभक्त प्रेम है। सहजयोगी अर्थात एक रस, सहजयोगी अर्थात सदा खुश, सहजयोगी अर्थात सदा समीप संबंध वाला, सहजयोगी अर्थात हूं ही वाला, सहजयोगी अर्थात सदा उमंग उत्साह में रहने वाला, सहजयोगी अर्थात सदा उसके है यह अनुभव वाला, सहजयोगी अर्थात सिद्धि स्वरूप, सहजयोगी अर्थात अधिकारी। यह सहजयोगी की परिभाषा है। जिन्होंने पा लिया है डिग्री, सिद्धि स्वरूप है, ये योगी की परिभाषा है। ये तीसरे प्रकार के योगी। चौथे प्रकार फिर है प्रयोगी आत्माएं। उसमें लगभग 8 प्रकार प्रयोगी में हो सकते हैं। ये 8 अलग अलग है या एक ही व्यक्ति में ये 8 चीजें हैं। प्रयोगी उनको नाम दिया गया है, 8 को ही। क्या करते हैं ये लोग? प्रयोग करते हैं। कहां पर प्रयोग करते हैं? कौन सी लेबोरेटरी है? अभ्यास की प्रयोगशाला है। अध्ययन करते हैं वहां पर, नई नई खोजें करते हैं। उनको शौक किस में है? खोज करने में, नए अनुभव, हर पॉइंट का, हर प्राप्ति स्वरूप का, हर स्वरूप का अनुभव। एक्सपेरिमेंट बना लिया है अपने संपूर्ण जीवन को और उसी प्रयोगशाला में वो रहते हैं। और इसी प्रयोगशाला में रहने की वजह से क्या फायदा है उनका? माया से सुरक्षित रहते, विकार उनमें नहीं आ सकते, क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन में रहते, मनन में रहते, अध्ययन में रहते, पढ़ाई में बिजी है। ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ नवीनता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का उनको शौक है, प्रयोग। कल महात्मा गांधी की जयंती है, 2 अक्टूबर। उन्होंने एक किताब आत्मचरित्र लिखी है, सत्य के प्रयोग, गुजराती में ओरिजिनल लिखी हुई यह किताब, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। उसमें लिखा है 30 साल से मेरा केवल एक ही चीज के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। 30 साल से मैं केवल एक ही चीज के लिए लालायत हूं और वो है आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना और मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। मैं जो भी लिखता हूं, मैं जो भी बोलता हूं, राजनीति में मैंने जो कुछ किया है वो केवल इस एक ही लक्ष्य के लिए है। स्वयं को जानना चाहता हूं, भगवान को जानना चाहता हूं और मुझे नहीं लगता संसार में किसी व्यक्ति ने अपना जीवन चरित्र इतना ईमानदारी से लिखा है। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपनी आत्मचरित्र लिखता है उसमें या तो कुछ चीजें बड़ा चढ़ाकर लिखता है या कभी बहुत ही कम लिखता है अपने बारे में। द मोस्ट ऑथेंटिक, ऐसी यह जीवन चरित्र है। जहां पर एक जगह चैप्टर 9, पिता की मृत्यु और दोहरी शर्म, उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि मैं शादीशुदा था, शादी हो गई थी, पिता मृत्यु शैया पर थे, दिन रात उनकी सेवा करता था, फिशुला की बीमारी थी, बीमारी बढ़ती जा रही थी, रात को 10-11 बजे तक रोज कभी भाई बड़े, उनके बड़े भाई आ जाते थे, उनके चाचा, कभी वो जागते थे पर अधिकांश वही जागते थे, परंतु शादी हो गई थी तो जब भी 10-11 बजे छुट्टी लेता था तो खुशी होती थी क्योंकि पत्नी इंतजार कर रही है। और उन्होंने लिखा, एक मेरे जीवन की ऐसी घटना उन्होंने लिख दी है कि एक बार ऐसा हुआ कि तबीयत तो खराब ही थी, 10-11 बजे होंगे, मैं चला गया छुट्टी लेकर और क्योंकि पत्नी सो रही थी उसको उठाया और 5 मिनट के अंदर ही खटखट आवाज हुई और नौकर आया और उसने कहा कि पिता की मृत्यु हो गई है, वो गुजर गए। उन्होंने लिखा कि ये जो वासना मेरे मन में थी, मेरी अपने पिता के प्रति अगाध भक्ति थी, मैं चाहता था कि अंतिम क्षण मैं उनके पास रहूं, परंतु वासना ने मुझे खींचा और इसके लिए मैं अपने आप को आज तक माफ नहीं कर पाया हूं। फादर्स डेथ एंड डबल शेम। सारे जीवन को एक लेबोरेटरी बनाई, एक प्रयोगशाला जिसमें सत्य के साथ प्रयोग किए, चोरी की पश्चाताप किया, मांसाहार किया पश्चाताप किया और वो सब कुछ लिख दिया। और वो भी बात लिखी कि 30 साल से प्रयत्न कर रहा हूं भगवान को पाने का पर नहीं मिल रहा है। मम्मा ने लेटर लिखा था 25 अप्रैल 1939, लेटर फ्रॉम ओम राधे टू एम के गांधी, इंग्लिश में लिखा हुआ लेटर है, ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जिसमें लिखा है कि आप यहाँ आइए, एक हफ्ते के लिए आइए और जानिए भगवान क्या है, कौन है। पर उनके पास समय नहीं था उस समय। तो जीवन को ही प्रयोगशाला बना देना, सत्य की प्रयोगशाला, अध्यात्म की प्रयोगशाला, अनुभवों की प्रयोगशाला, विकारोचित बनने की प्रयोगशाला। कौन सा वो ट्रिगर था, कौन सा वो स्टिमुलस था, कौन सी वो बात थी जो आ गई और जिसने ब्रह्मचर्य का खंडन कर दिया, कौन सा वो संकल्प था, भाव था, भावना थी, कल्पना थी, परिस्थिति थी, दृश्य था, ध्वनि थी, संगीत था, जिसने मन में विकारों को उत्पन्न किया। उसकी प्रयोगशाला अगर ये भी कर दो तो 75% माया से सेफ। इसमें 8 प्रकार प्रयोगी में। पहले प्रकार जो प्रयोग करता है, अनुभव करता है, सफलता को पाता है और उमंग उत्साह में रहता है, प्रयोग भी करता है और उस प्रयोग में सफल भी होता है और उमंग उत्साह में भी रहता है, अनुभव भी होता है उसको, ये पहले प्रकार के है। दूसरे जो है वो प्रयोग तो करते हैं परंतु मेहनत करनी पड़ती है, उमंग उत्साह कम रहता है, वो मेहनत वाले हैं। तीसरा प्रकार है सोचा और अनुभवी हो गए, और अगला प्रकार है सोच के अनुभवी होने वाले। ऐसे ये 4 प्रयोगी आत्माएं। पांचवा प्रकार है जो अभी प्रयोगी है परंतु कभी कभी सहजयोगी बन जाते हैं, ये भी उनकी अवस्थाएं हैं। और फिर 3 प्रकार है, एक लंबे प्रयोगी, एक छोटे प्रयोगी और तीसरे मोटे प्रयोगी। लेविस कैरोल की किताब एलिस इन वंडरलैंड की, छोटी सी 7 साल की एलिस एक स्वर्गलोक में पहुंच जाती है, एक बंद कमरे में, बड़ा सा हॉल है, दरवाजे से देखती है छोटे से छेद से कि उधर बहुत बड़ा बगीचा है, पर जाए कैसे। वहां पर एक बॉटल रखी रहती है, उसमें लिखा रहता है मुझे पियो ड्रिंक में, वो पी लेती है। जैसी ही पीती है एकदम ही छोटी हो जाती है। फिर क्या करे, फिर यहां वहां घूमती है, फिर एक दूसरी जगह लिखा रहता है ईट मी, एक केक रखा रहता है, केक खाती है तो इतनी बड़ी हो जाती है कि धड़ाम से छत ही उसके सिर पे लगता है, और फिर रोने लगती है, इतनी रोती है क्या करूं, रोने लगती है और इतनी रोती है कि पूरा पुल बन जाता है, और उसमें फिर वो उसे सफेद खरगोश दिखता है जिसके पीछे पीछे वो वहां आई थी, और सफेद खरगोश का वो पंखा लेती है और फिर एकदम छोटी हो जाती है, और छोटी जब होती है तो अपने ही आंसुओं के पुल में बहने लगती है जो उसने ही बहाए थे जब वो बड़ी थी। कभी छोटी कभी बड़ी, कभी बड़ी कभी छोटी, क्या रहस्य है, क्यों बड़ी छोटी हो रही है। वहां से बाहर निकलती है परेशान, फिर अपने साइज को प्राप्त करने के लिए उसकी जो ओरिजिनल साइज है, और फिर पहुंचती है भटकते 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 एक जगह जहां पर एक कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर समझते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में इल्ली, कैटरपिलर। वो बैठा होता है हुक्का पीते हुए, एक कैटरपिलर। कैटरपिलर पूछता है हु आर यू, तो एलिस कहती है आई नो वॉट आई वॉज इन द मॉर्निंग, बट थ्रू आउट द डे आई हैव चेंज माई शेप सो मेनी टाइम्स दैट आई डोंट नो हु आई एम नाउ। मुझे पता है मैं सुबह कौन थी, परंतु सारे दिन भर में इतने मैंने अपने आकार बदले हैं कि अब मुझे ये नहीं पता मैं कौन हूं। अमृत वेले तो पता है मैं कौन हूं, पर दिन में इतने रूप बदले हैं, इतने पोज बदले हैं, कभी तो लंबे हो गए सोच सोच के लंबे, कभी तो भारी हो गए बोझ के कारण भारी, और कभी तो छोटे हो गए दिल शिकस्त उदास कि अब मैं इनमें से कौन हूं मुझे नहीं पता। एक्सप्लेन योर सेल्फ, वो कैटरपिलर कहता है उसको, ये क्या कहती हो तुम कि मुझे पता नहीं। वो कहते हैं आई डोंट नो क्वाइट हु आई एम, मैं तो यही भूल गई हूं मैं हूं कौन। प्रयोगी आत्मा बाबा ने कहा साक्षी होकर स्वयं को देखो, सोच सोच के ओवर थिंकिंग, स्पिरिचुअल ओवर थिंकिंग, स्पिरिचुअल डिप्रेशन और स्पिरिचुअल बर्डन, तीन अवस्थाएं आत्मा की। कभी तो बहुत सोचती है, कभी उदास हो जाती है। क्या कारण था उदासी का, क्यों मैं उदास हुई? क्यों ये भार? क्या बाप को सब दिया नहीं है? स्वयं से बातें करो। बाबा सारा खेल देखता रहता है, बाप जब चाहे तब इस बेहद के खेल को देख सकते हैं, बाबा ने कहा। तो ये कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार के प्रयोगी आत्माएं। पहला प्रकार था जिनको तुरंत सफलता, निरंतर सफलता मिलती है। उसमें दूसरा प्रकार था जिनको कभी मेहनत करनी पड़ती है और उमंग उत्साह कम हो जाता है। फिर था सोचा और सफलता, और फिर था सोच सोच के सफलता, फिर था प्रयोगी बन जाते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं, और फिर था 3 छोटे मोटे और छोटे मोटे और लंबे। इनमें से हम कौन है? स्वयं को देखना है। तो ये 8 प्रकार। उसके बाद में अगले और 2 प्रकार। टीचर से मुलाकात, बाबा ने कहा ये जो योगी है वो है त्यागी आत्माएं, त्यागी योगी है, जिन्होंने त्याग किया है। नीचे बैठे हिस्ट्री हॉल में, केवल यही त्याग नहीं परंतु सेवा में भी त्याग किया है, और दिन रात सेवा कर रहे हैं और दूसरों का भाग्य बनाने में लगे हुए हैं। तो त्याग किए हुए जो है वो योगी। अभी अभी त्याग का साप्ताहिक कोर्स पूरा हुआ था, याद है ना? देहभान का त्याग, व्यर्थ का त्याग, अलौकिक संबंधों का त्याग, त्यागी महात्यागी सर्वंश त्यागी की परिभाषा, और एक अलग से मुरली थी सर्वंश त्यागी पर। तो जो त्याग करने वाले हैं वह योगी। दूसरे हैं डबल कमाल करने वाले योगी। ये 2 प्रकार है योगियों के। डबल कमाल करने वाले योगी किसको कहा बाबा ने? विदेशियों को। कौन सी डबल कमाल कर दी? एक तो भगवान को जान लिया साधारण तन में आए हुए, अवजानंती माम मुड़ा। हे अर्जुन, मैं जब साधारण तन में आता हूं तो लोग मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, ऐसे भगवान को जो साधारण तन में आया है उसको पहचान लिया, यह उनकी कमाल। और दूसरा जन्म कहा लिया, किस धर्म में, किस जाति में, किस कल्चर में, किस संस्कृति में, किस देश में, किस भाषा में, किस रहन सहन में, रस्म रिवाज में, खान पान कैसा था, वहां रहते हुए यहां आए हुए भगवान को जान लेना कितनी बड़ी कमाल है। यहां वाले सोए हैं, यहां वाले नहीं जान पा रहे हैं, यहां भगवान मधुबन में आया है, मधुबन के पीछे ही एक मंदिर है, भक्ति करते हैं लोग वहां पर, वो नहीं जान पा रहे, आबू निवासी नहीं जान पा रहे, परंतु देश विदेश से दूर दूर के कोने से लोग यहां आ गए, उसको जान लिया। विप्रसंत सुरत हेनुहित तो प्रभु तरी विविध शरीरा, ऐसे साधारण तन में आए हुए उस परमात्मा को पहचान लिया। बाबा कह रहे डबल कमाल है। और ये गलती नहीं है कि जन्म तुमने वहां लिया, ड्रामा में गलती वैसे भी नहीं हो सकती। उन आत्माओं का कल्याण कैसे होता जहां तुमने जन्म लिया? उनके कल्याण अर्थ हिसाब किताब तो थोड़ा बहुत था, खाली नाम मात्र, परंतु जन्म वहां लिया ताकि वहां के लोगों का कल्याण कर सको। ये 2 प्रकार के योगी, एक त्याग करने वाले योगी और दूसरे डबल वंडर, डबल कमाल करने वाले योगी। उसके बाद है सेवाधारियों से 3 प्रकार के योगी। एक प्रकार है महायज्ञ। की महासेवा का महाप्रसाद खाने वाले योगी। ये क्या है? महायज्ञ है। इस महायज्ञ का महासेवा का महाप्रसाद। एक है नैवेद्य, एक है प्रसाद और एक है भोग। तीनों में क्या अंतर है? भक्ति के शब्द है, एक है नैवेद्य, एक होता है भोग और एक होता है प्रसाद। प्रसाद अर्थात क्या? क्या करने के लिए? प्रसन्न करने के लिए। मतलब जो दिया जा रहा है वही प्रसाद है कि जो मिल रहा है बाद में वो प्रसाद है? जो दिया जाता है उसे नैवेद्य कहा जाता है, और जब दे रहे हैं वो देने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में उसे भोग कहा जाता है, और वो जो भोग भगवान या देवता स्वीकार कर लेते उनका जो झूठन, उनका जो झूठा किया हुआ भोग है वो जब वितरण किया जाता है तो उसे प्रसाद कहा जाता है। ये प्रसाद लोग आंखों पर और माथे पर रखते हैं, सबको बांटते हैं, तुम्हें भी प्रसाद मिला है इस महायज्ञ से, महासेवा का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है, क्या करो उसका? मस्तक पर लगा दो, स्मृति में समा लो, कौन सा प्रसाद है वो? कौन सा प्रसाद है? माताएं कौन सा प्रसाद खा रहे हो यहाँ पर मधुबन में बैठकर? प्यार का? मुरली से बताओ आज के। खुशी का प्रसाद, नशे का प्रसाद, और तीसरा अनुभूति का प्रसाद। खुशी जो हो रही है भगवान का बनकर मधुबन में आकर, वह प्रसाद है। प्रसाद को अकेले नहीं खाया जाता है। राजू भाई किसको खिलाया जाता है? सबको खिलाया जाता है, अकेले अकेले नहीं खाना होता है प्रसाद। नशा जो चढ़ा वो सबको चढ़ाना होता है, अनुभूति जो हुई है वो सबको करानी होती है। तो ऐसे महायज्ञ के महाप्रसाद को खाने वाले योगी आत्माएं, क्या ऐसे हम योगी हैं? खाने वाले और खिलाने वाले। प्रसाद थोड़ा भी व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना जाए, नीचे गिर जाता है तो क्या करते हैं? नीचे का उठा के भी खाते हैं, इतना उसका महत्व है प्रसाद का। तो एक इसमें दूसरे प्रकार के योगी हैं। जब भी किसी स्थान पर जाते हैं तो वहां से यादगार लेके जाते हैं। तो तुम कौन सी? तो निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप की यादगार ले जाने वाले योगी। यहाँ आए हो तो यहाँ से सर्व प्राप्ति की यादगार लेके जाना है। ऐसे नहीं कि वहां गए तो वायुमंडल ऐसा था, उस अपनी शक्ति से उसको परिवर्तन करो। तो ये दूसरे प्रकार के योगी हैं यहाँ पर। इस भूमि से कुछ न कुछ यादगार, निरंतर प्राप्ति स्वरूप की यादगार, कोई फिर असंतुष्टता नहीं रहे, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, रिक्तता नहीं है, हृदय भर गया है, फुल है। और तीसरे प्रकार है योगियों के, परिवर्तन भूमि में आकर परिवर्तन होने वाले योगी। यदि इस भूमि में नहीं आए, आए और यहां से वैसे ही चले गए बिना परिवर्तन हुए, तो उन्हें योगी नहीं कहा जाएगा। ये तीसरे प्रकार के योगी है। परिवर्तन भूमि में जब आए हो तो योजना बनाओ, प्लानिंग करो, क्या हम करें, कैसे परिवर्तन हो। ये तीसरे प्रकार के योगी है। और उसके बाद है 21वां अंतिम गौ योगी। वो कौन है? माता है। क्या कहा माताओं को बाबा ने? गोपाल बनकर आया है वो, गोपाल बनकर आया है। गो शब्द के तीन अर्थ है, एक इंद्रिय, दूसरा गैया, तीसरा भूमि। तीनों को ही जो सुख दे वह गोपाल है, वह गोविंद है। तो वह गोविंद आया है इस भूमि को सुख देने, सब है भूमि गोपाल की। वो गोविंद आया है सारी, वो गोपाल आया है सारी गैयों को चराने। दिखाया है भागवत में नंद बाबा की 900,000 गोपी गाय थी, और सभी गायों को एक श्री कृष्ण चराता था। बाप ने माताओं के सर पर ज्ञान का कलश रखा है, माताओं को आगे रखा है, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, और बीच में चलो रे मेरो मदन गोपाल। गैया आगे है, एक एक गैया का नाम था और एक एक गैया को वो नाम से पुकारता था। दिखाया है जितना कृष्ण गैयों के साथ रहा उतना गोपियों के साथ भी नहीं रहा। गोपाल को तीन चीजों से प्रेम था, गोप, गोपी और गैया, इतना उससे उसका प्यार था। किसके साथ? गायों के साथ। सबने अयोग्य समझा, बाप ने आकर योग्य समझा, तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सुख के सागर की संतान हो, सुख स्वरूप हो, दुख की लहर, दुख के छींटे, दुख की वर्षा, दुख के पहाड़, दुख की छटा, दुख की हवा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे सुख स्वरूप तुम आत्माएं हो। दिखाया है भागवत में यशोदा मैया एक बार उसे बहुत सजाती है और उसे जूते पहनाने लगती है। वो कहता है नहीं, जब तक मेरी सारी गायों को जूते नहीं मिलेंगे मैं नहीं पहनूंगा, पहले उनको पहनाओ। दिखाया है जब तक कृष्ण वृंदावन गोकुल में है तब तक उसने जूते नहीं पहने और बिना सिले हुए कपड़े पहने। दिखाया है बाद में वो जो वापस आता है तो वो जो गाय है उनके चरणों की जो धूल है उसके शरीर पर लगती है, इतना उससे प्यार है। दिखाया है ये गाय वो थी जन्म जन्म की योगी आत्मा है जिन्होंने भक्ति में प्रार्थना की थी कि हे गोविंद जब तुम आओगे हमें अपने पास ही रखना, तो इस जन्म में सारी गाय बनी, ऐसा भी दिखाया है। इंद्रियों को सुख देने वाला गोपाल है, भूमि को सुख देने वाला गोपाल है, गायों को सुख देने वाला, आत्मा रूपी गायों को सुख देने वाला वह गोपाल है। तो बाबा गौ पाल के रूप में आया है। ऐसे तुम सभी कौन हो? बाप के नैनों के नूर, बाप के होठों की मुस्कान, बाप के मस्तक के मणि, बाप के गले में विजय की जो माला है उसके तुम मणके हो। ऐसे गोल्डन चांस लेने वाले गोल्डन चांसलर हो, भगवान के क्लोज फ्रेंड हो, हैंडशेक जिसके साथ भगवान करता है ऐसे उसके ब्राइड्स हो, उस ग्रूम के। तो ऐसे ये कितने प्रकार के योगी हमने बताए, इसमें से कौन सा योगी बनना है और कौन से नहीं बनना है, नहीं बनने वालों की लिस्ट बताओ, फिर क्लास को पूरा करेंगे। एक तो छोटी मोटी और लंबी, ये तीन हो गए, और भी तीन है जो नहीं बनना है, 21 में से 6 नहीं बनना है। एक तो जो सफलता कभी कभी पाते हैं, और एक तो सोच सोच कर बनते हैं, और एक तो वो जो कभी कभी बन जाते हैं प्रयोगी। तो फिर से मेहनत वाले वही जो कभी कभी सफलता को पाते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है सहयोगी, परंतु कौन से सहयोगी? सतत सहयोगी, निरंतर सहयोगी, अथक सहयोगी, उमंग उत्साह वाले सहयोगी और तीव्र गति से जाने वाले सहयोगी, ये फर्स्ट। सेकंड, वो भी सहयोगी है परंतु कौन से सहयोगी? कभी कभी अंतर पड़ जाता है परंतु हाँ दूसरों को देखते हैं तो फिर आगे बढ़ने लगते हैं। तीसरे है सहज योगी जिसकी तो पूरी मुरली है। चौथे है प्रयोगी जिसमें 8 प्रकार। उसके बाद है 3 प्रकार के योगी। कौन से 3 प्रकार? एक तो 2 प्रकार त्याग करने वाले योगी और 4 बाकी है, सॉरी 4 बाकी है, 4 बाकी है, 4 बाकी है। बाप के प्रेम में चात्रक योगी, बाप के प्रेम के चात्रक योगी, जो भगवान जैसे चात्रक पक्षी होता है केवल वर्षा का पानी पीता है, वैसे ये योगी है और किसी का प्यार उन्हें नहीं चाहिए, केवल एक का ही प्यार, एक से ही प्यार, ऐसे चात्रक योगी। दूसरे हैं जो गीत गाते हैं, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, यह गीत गाने वाले योगी। तीसरे हैं जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है, इसी धुन में रहने वाले योगी। और चौथे हैं हिम्मत वाले योगी। अब हुए 21, पहले 4 की कमी थी। हिम्मत वाले, हिम्मत नहीं हारते चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत वाले योगी, चात्रक योगी। और एक ही धुन में रहने वाले योगी, साल भर महीने भर 12 मास बस एक ही धुन, जाना है जाना है जाना है, विदेशियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। तो ये चार, और फिर बताया टीचर्स में त्याग करने वाले और टीचर्स में डबल कमाल करने वाले, सेवाधारियों में महाप्रसाद खाने वाले, सेवाधारियों में यादगार भूमि से यादगार ले जाने वाले, कौन सी यादगार, सर्व प्राप्ति स्वरूप की यादगार, और परिवर्तन भूमि में आके परिवर्तन करने वाले, और फिर गौ पाल की गैयाए जिनके जीवन में दुख की लहर आ नहीं सकती। तो बाबा ने एक प्रश्न पूछा है, स्वयं को चेक करो कि मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं। स्वयं के पोजेस को देखो, ये जितनी 21 प्रकार के पोजेस कहो इसमें से मैं किन किन पोजेस में सारे दिन भर रहता हूँ। 27 प्रकार की पोजेस, आज सुबह मुरली मंथन जो ब्रिजमोहन भाई और आशा बहन का है, उनमें इसी मुरली पर वो दोनों भाई साहब ने एक बात कही थी कि ऐसे बाबा भी, ऐसे साइकोलॉजिस्ट कैसे 27 प्रकार के मूड्स होते हैं, तो बाबा भी ऐसे अलग अलग पोजेस आज गिना रहा है। तो ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ। वो एलिस सोचती है कि अब मैं स्थिर हो गई हूँ, बीच में वो सोचती है, पर लास्ट में एक कोर्ट का ट्रायल होता है, वहां अचानक ही वो बड़ी हो जाती है। उसको लगता है तब तक कि अब मैं स्थिर हो गई हूँ, बहुत सारे सीन में वो स्थिर है, पर अचानक एक समय बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर उसको लगता है ये तो जो क्वीन थे, ये तो कार्ड थे, ताश के पत्ते थे जिनको मैं सत्य समझ रही थी, और फिर अपने स्वप्न से जागती है, ये सारा उसका स्वप्न था। अच्छा, तो बाबा को आने को कितना टाइम है, अगले संडे इसी समय हम बाबा के सम्मुख होंगे। तो जितना समय हमें मिला है इस 6 दिन में या 7 दिन में, जो आज की मुरली में बाबा ने योगी बनने को कहा है, ऐसा संपूर्ण योगी बनकर, सहज योगी बनकर, स्थित प्रज्ञ योगी बनकर हमें बाबा के सामने बैठना है। बैठेंगे सभी? ओम शांति।